सुंदर गीत सुना। क्या है हमारी चाहत, हम बाबा से क्या कह रहे हैं, तुमको निहार इनको ये जी चाहता है। और बाबा क्या चाहता है, बाबा चाहता है याद में रहकर सतो प्रधान बन जाओ, ताकि जब घर में चले तो बिना सजा खाए चले, जिसको ही दूसरे शब्दों में कहते हैं पास विद आनर होकर चले। आज इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी, एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी उत्तर प्रदेश की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन, साइंस में ग्रेजुएशन किया मेरठ यूनिवर्सिटी से और 1964 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। 1968 में हेडक्वार्टर में आए, एक साल बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला और फिर तो बाबा ने, हम देखते हैं आज कैसे तीनों ही कैंपस में बाबा का, भोलेनाथ का भंडारा देखने के आप निमित्त हैं। तो भंडारा से सबको ब्रह्मा भोजन मिलता है और समस्या से समाधान सीरियल से सारे संसार को मन का भोजन आपने परोसा। तो ऐसे हमारे अनुभवी रतन हमारे बीच में हैं, जो कहा कि बिना सजा खाए हम बाबा के साथ चले, वो पास विद आनर वाली स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। आदरणीय प्राता जी,
ओम शांति। पहली बात, पास विद ऑनर होने का लक्ष्य है, पूछ लो अपने से, क्योंकि ये तो हाईएस्ट मंजिल है। वो न भी हो तो दूसरा लक्ष्य होना चाहिए, इस ब्राह्मण जीवन को बहुत सुंदर बनाना। भगवान मिला तो आनंद छा गया, लड़ाई नहीं। जानते हैं ना लड़ाई कौन सी, अंदर वाली। बाहर लड़ते हैं उनका तो कोई स्थान नहीं है, लेकिन अंदर की लड़ाई भी न रहे, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। फिर भी पास विद ऑनर टॉपिक दिया है, मैं उस पर थोड़ा सा कुछ कहूंगा। हो सकता है आप में से कोई पास विद ऑनर होने का लक्ष्य रखता हो। पास विद ऑनर का अर्थ है सीधा अर्थ, बताओ बिना सजा खाए ऊपर जाना। हाँ, और समीप आओ, असरतन बनना। आठ रतन ही योग बल से संपूर्ण विकर्मों पर विजय पाते हैं, नष्ट और विकर्मा जीत भी बन जाते हैं। बाबा के बहुत सुंदर शब्द हैं इसमें, ये पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं ही संकल्पों की सजा से भी मुक्त रहती हैं। यहां जाने से पहले, जाने में तो कोई सोच भी लेते हैं, जब जाएंगे तभी देख लेंगे क्या क्या होता है। जाने से पहले रहने में यहां संकल्पों की सजा न हो मन में, उलझन न हो, मन साफ आनंद में, खुशियों में, ईश्वरीय नशे में सदा रहता हो, दुनिया का इफेक्ट न पड़ रहा हो। बड़ी बड़ी बातें हैं जरा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। लक्ष्य तो यहीं तक पहुंचने का है और पहुंचना होगा ही। कलयुग के वातावरण का, कलयुग के विकारों का इफेक्ट हमारे ऊपर न हो, कलयुग की गंदगी हमें छू न पाए, कलयुग की बदबू हमारी खुशबू से नष्ट हो जाए चारों ओर। कई सुंदर बातें बाबा ने कही हैं इसके लिए। पास विद ऑनर होने वाले चारों सब्जेक्ट में फुल होंगे, इस पर तो हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ये हम सबका सब्जेक्ट है, लक्ष्य है। चार सब्जेक्ट आप जानते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों में फुल मार्क्स लेने वाले। दो और सुंदर बात, ये आठ आत्माएं ही अंत तक आत्म अभिमानी बन जाती हैं, आत्माभिमानी का सब्जेक्ट बहुत गहरा है, अंत तक, अर्थात आत्मा के सातों गुण जीवन में आ जाते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, पीछे साकार मुरलियों में आई, जो पांचवी दौनर होने वाले हैं वो मेरे समान ज्ञान के सागर बन जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान, कुछ भी शेष नहीं रहेगा जानना। मैं कौन हूं ये भी संपूर्ण रूप से, और शिवावा कौन है ये भी संपूर्ण रूप से जान लेंगे, माया क्या है ये भी संपूर्ण रूप से, और चारों सब्जेक्ट को भी संपूर्ण रूप से। ये पांचवी दौनर होने वाली आत्माएं दो क्वालिटी और, निरंतर योगयुक्त और संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगी। थोड़े आगे हो जाओ भाई, क्योंकि आने वाले पीछे ही बैठेंगे। निरंतर योगयुक्त और संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्र से भी आगे का एक कदम है संपूर्ण निर्विकारी, जिसमें विकारों के जो अंश हैं, जिनको कई लोग विकार समझते भी नहीं है, नफरत, ईर्ष्या, परचिंतन, बुरी दृष्टि, तो बड़े विकारों में आ ही जाती है, इन सब से मुक्त, मैं मेरा, इन सब से परे, ये हमारी सूक्ष्म धारणाएं हैं। संपूर्ण रूप से संतुष्ट आत्मा, बाबा ने ये बहुत बार शुरू में मुरलियां चलाई, जो विश्व पर राज करने वाले हैं वो यहां सभी के दिलों पर राज करेंगे। बहने भी आगे हो जाए, भाई आने वाली पीछे ही घुस रही हैं, आगे आ जाए करो, थोड़ी सी 2 इंच जगह में भी बैठ जाती हैं, आ जाओ आगे आ जाओ। अब हमें पहले तो एक ये चीज याद रखनी है कि सतयुग के विश्व महाराजन कितने होंगे, बोलो, 8। बहने बोले, थोड़ा और सोच लो, एक राजन कितने समय राज करेगा, 150 साल, यानी जन्म लेते ही गद्दी पर मरने तक। अब सोचो, अब तो समझ में आ गई बात, क्यों मैंने पूछा, बोलो। कोई भी राजा अपनी आयु का लगभग आधा समय ही राज करेगा, 70, 75, 80, तो 16 से ज्यादा विश्व महाराजन होंगे। सारे सतयुग पर कितनी आत्माएं राज करेंगे, बोलो जरा, आप सबने सुना है 9 लाख थोड़े राज करेंगे, हैं? 108। मुरलिया ध्यान से सुना करो, साकार मुरलियों के ही महावाक्य हैं। माला जो बनती है विष्णु की, विष्णु माना राज करने वाला, वहां सिंहासन के पीछे विष्णु का स्टैचू बना रहेगा हमेशा, और सोने हीरो का होगा, पत्थर का नहीं, यानी विष्णु राज कर रहा है, उसके 2 स्वरूप लक्ष्मी नारायण राज कर रहे हैं। तो 108 राज करेंगे, ये विष्णु के गले की माला, इनको विजयी रतन कहते हैं, इसका अर्थ है माया पर संपूर्ण विजयी बन गए। अब हम चर्चा करेंगे, अपने पुरुषार्थ को, सभी को तेज गति देनी है, गुह्य गति देनी है, संतुष्ट आत्मा बनना है, ये तो ठीक है ना। कोई कहेगा 8 की माला नया टेंशन क्यों लेना है, छोड़ो इस चक्कर को, तो चक्रव्यूह बन जाएगा, विजयमाला में आने का लक्ष्य रखा जा सकता है, क्योंकि मैं ये बात बहुत बार सुनाई है, बाबा ने ये बता दिया था कि विजयमाला में अंत तक भी 2-3 सीट खाली रखी जाती हैं। कोई भी तेज दौड़कर बैठना चाहे, मौका है। कोई ये नहीं कहेगा हम तो देर से आए थे, कुछ खाली नहीं बचा था, सारी सीट जैसे ट्रेन में हो जाती है ना, सब भर गई थी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो चाहेंगे आप विजयमाला में आना? विजयी रतन जिन्होंने माया को संपूर्ण रूप से जीत लिया, बाबा के बहुत सुंदर शब्द हैं, ध्यान देना, तुम विजय माला के ऐसे मणके हो जिन्हें याद करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। माला फिरते ना, फिरते फिरते समस्याओं से मुक्त। तो जो स्वयं विजय माला में आने वाले वो कितने अच्छे होंगे, समस्याओं से मुक्त होंगे, बहुत महान होंगे। तो चारों सब्जेक्ट में तेज पुरुषार्थ करना है, फुल मार्क्स लेना है, अच्छे मार्क्स लेना है, 90% से ऊपर लेने वाले असरतन, 75 से 90 तक लेने वाले विजय रतन, फर्स्ट क्लास आत्माएं। दो कैटेगरीज रखी इनमें बाबा ने, पहले ट्रेन्स में फर्स्ट क्लास डब्बे अलग होते थे और एसी वाले अलग। अब फर्स्ट क्लास खत्म कर दिया था तो बाबा ने कहा असरतन है एसी वाले, एयर कंडीशन वाले, और 100 फर्स्ट क्लास वाले। तो 100 आत्माएं हैं फर्स्ट क्लास, 8 हैं टॉप क्लास। जो होशियार स्टूडेंट रहे हो आप में से, उनको पता होगा यूनिवर्सिटी में 10 टॉप स्टूडेंट, तो गॉडली यूनिवर्सिटी में 8 टॉप स्टूडेंट, लगभग सभी समान होते हैं, सबसे महान होते हैं, इनके वाइब्रेशन से संसार को बदल देते हैं। तो हमें सबसे पहले सोचना है ज्ञान का सुख मिले जीवन में, ज्ञान के सब्जेक्ट में हमारे अधिक से अधिक नंबर आ जाएं। पहला लक्ष्य हमारा, ज्ञान हमारा एक सब्जेक्ट है। सभी को संपूर्ण ज्ञान मिल गया? बोलो। नहीं, गुह्य बातें तो बताएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सबको संपूर्ण ज्ञान मिल गया? मिल गया। या खोज है? खोज है। आत्मा कहाँ से आई? खोज है क्या? आत्मा क्या है कुछ जानना बाकी है क्या? किसने कितना जाना वो अलग चीज, पर जान तो सबने लिया। और संपूर्ण ज्ञान की पहचान होती है, ध्यान से सुनेंगे, जो आप सभी को हो गई है। देखो, दुनिया में जन्म जन्म हम सब ने भी शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, दर्शन, उपनिषद, गीता सब पढ़ा, लेकिन तृप्ति हुई थी? सूक्ष्म रूप से भी देखो आप, किसी को भी, आज भी, चाहे वो शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, किसी को भी ये तृप्ति है कि सारा ज्ञान मिल गया? अंदर में है, खोज है, खोज चलती है। मैं कौन हूं ये भी लोग नहीं जान पाए। सबसे छोटा लेसन आप सबको पता होना चाहिए बात का, तब तो ज्ञान की वैल्यू समझ में आएगी ना, नहीं तो ज्ञान सहज मिल गया घर बैठे, सोचते हैं क्या मुरली सुनने जाना है, मिल तो गया, ज्ञान की वैल्यू नहीं रहती। पर ये ज्ञान सचमुच रतन है। हमें क्या हुआ, ज्ञान मिलते ही पूर्ण संतुष्टि पा लिया, हो गया या नहीं। चाहे किसी ने शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, किसी को बाहर के ज्ञान का पता था ये न पता था, संतुष्ट हो गई आत्मा, जान लिया सब कुछ। क्योंकि भगवान को जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, ये बाबा के महावाक्य हैं। और बाबा बहुत कहते रहे, बच्चे मेरे द्वारा मेरे को जानो, बिना मेरे कोई मेरे को नहीं जान सकता। शास्त्रों से वेदों से कोई भगवान को जान ले, एक ही बात में सारा खेल बिगाड़ दिया लोगों ने। कौन से सर्वव्यापी है, जब कुछ समझ में नहीं आया, जैसे सुख दुख के लिए कह दिया ना, आज छोड़ो सुख दुख का चक्कर, सब भगवान देता है। अपनी जान बचाने के लिए कि हमें दुख क्यों हुआ, कह दिया भगवान देता है। बाबा क्या कहता है, मीठा शब्द बोलता है, बोलो, बहुत स्वीट शब्द। मुरलियों में रोज आता है, साकार मुरलियों पे ही ध्यान देना आप। आया याद, बच्चे बाप कभी अपने बच्चों को दुख देगा क्या? लौकिक बाप भी नहीं देता, सभी बाप बैठे हैं ना, देते हैं दुख कि ऐसा भी बच्चा हो, चलो हमारा बच्चा है, उसके सुखों का ही मार्ग ढूंढते हैं, ये खुश रहे। तो ज्ञान का सब्जेक्ट, ज्ञान की लिखते जाएंगे आप और सब पे ध्यान देंगे, ज्ञान को वैल्यू देना, ज्ञान की संपूर्ण वैल्यू को समझना। देखो कितनी वैल्यू है ज्ञान की। आज संसार में एक चीज की मारामारी बढ़ती जा रही है, सबको उस चीज का नहीं पता है, और वो है ज्यादा सोचने की आदत। ये बढ़ती जा रही युवकों में, सब में नहीं पर बढ़ती जा रही तेजी से। और उसका सहज समाधान है, अगर आत्मा का अभ्यास किया जाए तो मन की भागदौड़ शांत हो जाएगी। ज्ञान, इसका सुख मिले हमें, है या नहीं सुख ज्ञान में भी, अनुभव के बिना कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। ज्ञान में भी बहुत सुख है, इसलिए एकांतवासी बनकर ज्ञान का चिंतन करना, स्वयं से बातें करना, इससे ज्ञान का सुख मिलेगा। कौन से ज्ञान का चिंतन करना, बाबा को तो हमने जान लिया, भगवान को तो जान लिया, पर बहुत सुंदर बात हुई कि बाबा ने सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया, और ज्ञान ही नहीं दिया, ध्यान देंगे सभी, ये बताया तुम कौन थे, कौन थे, निर्विकारी देवता थे तुम, ये तो किसी को नहीं पता दुनिया में। भारत सोने की चिड़िया थी, बहुत साहूकार था भारत, थोड़ा थोड़ा जानते हैं इतिहासकार, अंग्रेजों के आने से पहले तक भी भारत सबसे साहूकार देश था, अमेरिका इंग्लैंड नहीं थे, इंग्लैंड तो भारत से ले गया सारा माल, साहूकार हो गए, फिर वापस दे रहे हैं अभी, बाबा ने कह दिया ना, राज बता दिया, कर्मों की गति वापस कर रहे हैं। लेकिन राज बताया तुम कहाँ थे, कैसे उतर कर आए हो, यहाँ आ गए हो, मैं तुम्हें लेने आ गया हूं, इसका चिंतन, ये हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाएगा, व्यर्थ चक्र सारे समाप्त कर देगा। करके देखेंगे सभी अच्छी तरह, इसमें टाइम नहीं लगता, सोने से पहले कर लेना, बेड पे लेट के कर लेना, कहां से उतरे थे, कब उतरे थे, क्या थे हम, कैसे धीरे धीरे एक शरीर छोड़ा, दूसरा वो छोड़ा, तीसरा वो छोड़ा, चौथा आ गए हैं एंड में, एंड में आए तो कौन मिल गया, इनसे चिंतन में सोना चाहिए। भगवान का साथ मिल गया, उसको जी भर के देख लिया, देख लिया या नहीं, जी भर के देख लिया। ये चिंतन सभी को रखना है, इससे ज्ञान का सुख मिलेगा। दो बातें और, ज्ञान को अपनी विजडम बना देना है। जानते हैं ना इंग्लिश का शब्द तो आप सभी, विजडम, विवेक, सद्विवेक। विजडम बहुत बड़ा शब्द है। ज्ञान तो स्कूल कॉलेजों में भी उस तरह का दिया जाता है जो जिसका सब्जेक्ट है। हमारे बाबा के ज्ञान को, जिसमें जिसको सचमुच ज्ञान कहेंगे, इसको अपनी विजडम बना देना, विवेक बना देना, ये ज्ञान के चिंतन से होगा। तीसरी बात, ज्ञान को अपनी शक्ति बना देना। ज्ञान बल भी है जो हमें अचल अड़ोल बनाने वाला है। एक एक ज्ञान की बात हमारे लिए बल का काम करे। सभी के घरों में लिखा रहता है बाबा के चित्र के साथ, क्या लिखा रहता है, तू चिंता न कर। कितनी छोटी सी बात है पर कितने काम की है। कितने काम की क्या है, शब्द ही नहीं, कितना तो सब छोटा है। भगवान कह रहा है, बच्चे डोंट वरी, मैं हूं यहां, तुम्हारे साथ हूं, मेरे होते क्यों परेशान हो रहे हो, आनंद आएगा। ये एक ही पॉइंट बल बन गई ना। अनुभव सुना दूं कुछ लोगों का, कईयों के फोन आते हैं, डर बहुत लगता है भाई जी, माताओं को ज्यादा थोड़ा, युवकों में कुछ के केस हो गए, रात को लगता है कोई ताला तोड़ के ना आ जाए, भूत ना आ जाए, कई तरह के डर। सब परिवार वाले हैं, डर लग रहा है, ये कलयुग के अंत की सबसे बड़ी त्रासदी है और होने जा रही है, भय फैल जाएगा संसार में। मैं कहता हूं क्यों, ताला क्यों तोड़ देगा आपका कोई, दो लगा दो, हंसने लगते हैं। और अगर याद आ जाए, मैं बैठा हूं, तो डर रहेगा नहीं रहे। एक ही पॉइंट ने बल दे दिया ना, जीवन में सहारा दे दिया। ऐसी ज्ञान की बहुत बातें हैं, सबको ऐसी बातें लिख लेनी चाहिए। मैं बहुत साल से क्लासेज में ये बात कह रहा हूं, 25 बात लिख लो, 16 तो लिख ही लो जो आपके लिए सपोर्ट हो, सहारा हो, अचल अडोल बनाने वाला, भय को दूर करने वाला, परेशानियों से मुक्त करने वाला, मन को शांत करने वाली बातें। मन तूफान की तरह दौड़ने लगता है, शांत हो जाए, जो कुछ हो रहा है ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, थोड़ा चिंतन करेंगे चित शांत हो जाएगा। हो वही रहा है जो कल पहले हुआ था, चित शांत हो गए। दो चार बातें हैं, किसी को कोई बात बल देगी, किसी को कोई बात, सबको सब बातें बल नहीं देती। जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। ये बात सबको तो नहीं लगेगी अच्छी, किसी का कोई मर गया हो कहे सब कुछ कल्याणकारी है, लड़ने आ जाएंगे आपसे, कल्याणकारी कैसे है, सारा तो खेल बिगाड़ दिया हमारा। तो सभी ज्ञान को अपना विवेक बनाएंगे, ज्ञान को अपना बल बनाएंगे। अब आगे चले योग। योग को बहुत सहज भाव से समझना है सबको। क्लासेस तो बहुत सुनी होंगी। योग युक्त जीवन का अर्थ है स्मृति स्वरूप होना, श्रेष्ठ स्वमानधारी होना, आत्मिक दृष्टि और कर्म योग का अभ्यास करना। ये योग युक्त जीवन, बुद्धि को स्थिर कर देना, ऐसा करने वाले योग में फुल मार्क्स लेंगे। ज्ञान के फुल मार्क्स वो, ज्ञान ही ज्ञान रह जाए, ज्ञान के अलावा कोई और चिंतन न हो, जिसको बाबा कहते हैं मुख से भी ज्ञान रतन निकले, चिंतन भी ज्ञान का हो, व्यर्थ खत्म, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाए, ज्ञान में फुल मार्क्स। योग के ये सब सब्जेक्ट हैं। इसलिए योग केवल बैठ के करने का विषय नहीं है, कर्मों में योग हो जाए। योगी अगर बनना है, योग युक्त जीवन बनाना है, कर्म में योग, जैसे पांच स्वरूपों का अभ्यास है, उसको बैठ के करना ज्यादा किसी को प्रभावशाली लगेगा, और किसी को कर्मों में ये नशा रखना कि मेरा भविष्य क्या है, मैं इस देवी हूं, नशे नशे की बात है, बहुत ज्यादा चिंतन भी नहीं होता, इसमें नशा हो जाए। ये तो केवल एक ब्रह्मा बाबा का ही उदाहरण है हमारे पास, बाकी जो करते हैं वो ज्यादा बताएंगे भी नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का प्रत्यक्ष में था, बहुत नशा भविष्य का, बहुत नशा, नारायणी नशा, उन्हीं के नाम से तो फेमस हुआ होगा ना नारायणी नशा, जो नारायण बनने वाला है उसका नशा नारायणी नशा बन गया। धारणाएं, कुछ धारणाएं अपने पास चुन कर रखेंगे। धारणाओं का बीज क्या है? धारणाओं के बीज में कौन सी धारणा है? प्योरिटी, सुख शांति की जननी, आत्मा को दिव्य बनाने वाली। इसके लिए मैं आप सबको कहूंगा, प्योरिटी को अपना बल बना लें। प्योरिटी युद्ध नहीं, आनंद, दो चीजें याद रखेंगे। इसके लिए अपनी प्योरिटी का स्वमान, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति, अगर आप इसको सरल बनाना चाहते हैं तो सुन लें ध्यान से, पांच स्वरूपों का अभ्यास प्योरिटी को नेचुरल कर देगा। अव्यक्त बाबा ने कई बार स्वयं पांच स्वरूपों की ड्रिल कराई है, सुनते होंगे आप क्लिप्स, वो तैयार हैं। देखो, पहली जिसको प्योरिटी से जोड़ा, तुम आत्माएं जब परम धाम में हो, तुम्हारी चमक, तुम्हारा तेज अन्य आत्माओं से अधिक है, और तुम बाप के बहुत समीप हो, दो बातें कही। फिर देवयुग में देवता, तुम्हारे चेहरे ही सबको पवित्रता की झलक दिखाते हैं, बहुत दिव्यता है उस प्योरिटी में। फिर इस देव देवियां सब पवित्र, ब्राह्मण जीवन पवित्र, हम बनते हैं फरिश्ते, संपूर्ण पावन, धरती के संसार के आकर्षण से बहुत दूर, देह के आकर्षण से उपराम। तो पांच स्वरूपों का अभ्यास थोड़े थोड़े चिंतन से बढ़ाना है। चिंतन, पहले ज्यादा चिंतन करेंगे, फिर आपे वो धीरे धीरे कम होके उस स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे। तो योग और प्योरिटी दोनों साथ साथ चलेंगे। योग जितना अच्छा होगा, पवित्रता उतनी ही नेचुरल होगी, और पवित्रता बढ़ते बढ़ते बुद्धि योग में स्थिर होती जाएगी। योग में एक चीज और, बाबा से जो हमारा नाता है, और उस नाते को एक ही रूप से सभी ले लेंगे, बाबा मेरा है, छोटा सा शब्द है ये, प्राइमरी शब्द भी है और हाईएस्ट बात भी है। जो भगवान है वो मेरा है। मैं इसमें एक ही बात जोड़ता हूं, बाकी तो आप सब जानते हैं बहुत चीजें। उसे अपनापन हमें बढ़ाना है, परंतु मेरों पर अधिकार होता है, अपनों पर अधिकार होता है। तो दो चीजों पे सभी ध्यान देंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जीवन में बहुत आनंद आएगा। जो कुछ बाबा का है वो सब मेरा, सब कुछ बाबा का है वो बाद में सोचना, वो आपका काम है कितना आप सोचते हैं। कई तो ये भी सोचता है मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। भक्ति में हमारी मनोहर दादी बहुत हंसाया करती थी, मेरा सो मेरा, उसको हाथ न लगाना, तेरा भी मेरा। मनोहर दादी की कभी कभी याद आती है क्लास में यहाँ भी और भाषणों में भी, कि मंदिर में जाकर माताएं गीत गाती हैं, तन मन धन सब तेरा, घर आते ही तन मन धन सब मेरा। तो बाबा के पास जो खजाने हैं वो सब मेरे हैं। ये गहरी फीलिंग बाबा की मुरली सुन चुके हैं कल शायद या परसों, मैंने तुम्हें गोद में लिया है। सुनिए, गोद के बच्चे एडॉप्ट कर लिया है। तो जब एडॉप्ट कर लिया, बाबा ने उदाहरण दिया था किसी गरीब के बच्चे को राजा एडॉप्ट करने वाला हो और बच्चे को पता लग जाए कि राजा मुझे एडॉप्ट करने पर विचार कर रहा है, तो क्या होने लगेगा उस दिन से। यहां भगवान ने एडॉप्ट कर लिया अपना सब कुछ देने के लिए। वाह, बहुत खुशी हो गई आपको सब कुछ देने के लिए, लेकिन हमें भी देना पड़ेगा। चलो सब कुछ ना दो, कुछ तो दो। केवल धन की बात नहीं होती है, समर्पणता की बात जब आती है तो सभी धन के बारे में सोचते हैं, अकेला धन नहीं, भावनाएं भी अर्पित कर देना, अपने अहम को अर्पित कर देना, ये सूक्ष्म बातें हैं। तन को भी अर्पित कर देना, इसमें बहुत गुह्यता है, मोटी चीज नहीं है। तन भगवान का हो गया तो इस तन पर किसी और का अधिकार नहीं, सब चिंतन करना। ये बाबा का हो गया, उसके कार्यों के लिए हो गया, उसकी आज्ञाओं के अनुसार इसको चलाएंगे। तो एक हुआ बाबा के सर्व खजानों पर अधिकार, और दूसरा सुन लो अब, ये भी बहुत गहरी बात है लेकिन उसकी भेंट में मोटी है, बाबा पर भी अधिकार, भगवान पर अधिकार। ये बड़ी बात हो गई, लास्ट एंड फाइनल। सोच लो, उसे कुछ मांगने की बात नहीं, उस पर अधिकार, काम करना इस पे। भगवान पर मेरा अधिकार है क्योंकि वो मेरा है। इसको चिंतन में लाकर अप्लाई करना अपने पुरुषार्थ में, बहुत मदद मिलेगी। धारणाओं में हमारा चित्त, प्योरिटी की बात तो बड़ी है, अलग उस पे क्लासेज होती हैं। हमारा चित्त, या ये कहें जिसमें जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, सब आत्माओं से आत्मिक स्नेह और शुभ भावनाएं नेचुरल होती जाएंगी। ये चेक करना है, नफरत नहीं। एक बहन ने आज बहुत अच्छा अनुभव सुनाया मुझे, आज ही विदेश से आई थी गुजराती, कहा मैंने जब से क्षमा याचना और क्षमा शुरू किया मन बहुत शांत और प्रसन्न हो गया। नहीं तो 5-7 लोग ऐसे थे जिनके लिए नफरत की भावना रहती थी, इसने मेरे से ऐसे किया, सबको रहती है ना, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, कहा मैंने सबको क्षमा कर दिया, चित्त शांत हो गया, बहुत खुश रहने लगी मैं। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है, बदले की भावना ब्राह्मण जीवन को भी, दुनिया में किसी के जीवन को भी अशांत, तनाव से भरा हुआ, परेशानियों से भरा हुआ बना रही है। क्षमा दान दें, बड़े ही छोटों को क्षमा कर सकते हैं ना, हम बड़े हैं, हैं या नहीं बड़े। बाबा की मुरली में तो बहुत सुंदर शब्द आया था, आप सब नोट करते होंगे, नहीं करते हैं तो अभी कर लो, तुम धरा के चेतन सितारे हो, साकार मुरली में था, तुम नक्षत्रों से महाबलवान हो। आई याद, अभी हफ्ते पहले की बात है, नक्षत्रों से भी महाबलवान हो तुम। बाबा हम सभी को हमारी याद दिलाते हैं, हम अपने को ही भूल जाते हैं ना, छोटी समस्या आ गई तो थोड़े परेशान, भूल गया हम बहुत शक्तिशाली हैं। शुभ भावनाएं और स्नेह से चित्त भर गया हो, धारणा आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट रहना अपने हाथ में है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वो कभी पूर्ण भी नहीं होंगी सारी की सारी, एक पूरी होगी दूसरी जाएगी। धन की इच्छा तो ऐसी है, इतना पैसा हो गया ये तो बहुत कम है, बढ़ा दो बढ़ गया ये उसकी भेंट में तो कम है, उसके पास तो ज्यादा है। और ये तरसनाएं मनुष्य को सुख से जीने नहीं देती हैं। संतुष्ट आत्मा, भगवान मिल गया, मन की भाग दौड़ शांत, सभी माताएं भाई विचार करेंगे, चित्त शांत हुआ या भाग दौड़ उलझने बाकी हैं, उलझन वालों को इस जीवन का सुख नहीं मिलेगा। छोड़ दे बहुत सारी इच्छाओं को, बेकार की इच्छाएं बहुत रहती है, अपने को नम्र चित्त, पोलाइट हम्बिल बना देखो, ये योगियों की पहचान है। सूक्ष्म दृष्टि में मैं पन का त्याग, ये बहुत सूक्ष्म धारणा है हमारी, मैं पन को छोड़ते चलें। सेवाओं में सेवा सभी कर रहे हैं, मैं पर न हो, सेवाओं में दो भाव सभी धारण करेंगे, निष्काम भाव, समर्पण भाव, दो बहुत उच्च कोटि की धारणाएं हैं। सारी श्रीमद् भगवत गीता में ये दो शब्द बार बार आ गए हैं। योगी समर्पित भाव से जीते हैं, निष्काम भाव से कर्म करो। अर्जुन को तो ये कहते हुए दिखा दिया, वहां तो श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना, बोल रहा है तुम ये भी छोड़ दो संकल्प हम जीतेंगे या हारेंगे, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, केवल युद्ध करो, दोनों कामनाओं से परे, ये सिखाया गया है। कर्म करते हुए हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख की भावनाओं से परे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा ना, सुख ही मिलेगा, दुख नहीं, लाभ ही होगा हानि नहीं, जय होगी पराजय नहीं, सदा सफलता मिलेगी। दोनों चीजों पे ध्यान दें, हम निष्काम होते जा रहे हैं, सेवा भी हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुख से हमें ज्ञान भी देना है, तन मन धन से भी सेवा करनी है, आप सब कर रहे हैं बहुत, हमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन सूक्ष्म धारणाएं ये हैं। मनसा द्वारा रोज मुरलियों में आता है, शक्तियों का सकास देने की सेवा बोल द्वारा, ज्ञान देने की सेवा कर्म द्वारा, गुण गुण दान का अर्थ होता है हमारे कर्म क्षेत्र पर हम ऐसे रहें कि हमसे दूसरे लोग गुण सीखते रहें। घरों में आप इतने शांत हो जाएं कि आपको देखकर आपके परिवार वाले भी शांत रहना सीख जाएं। ये नहीं काम कर रहे हैं और थोड़ी परेशानी हो रही है। देखो परेशानी भिन्न भिन्न तरह से कभी कभी अच्छे ढंग से भी हो जाती है। कोई प्रोग्राम चल रहा है सेंटर में, आपको जाना है, परिवार वालों ने काम ज्यादा दे दिया है आज, अब मन दो तरफ लगा हुआ, ये काम भी करना और जाना भी है, तो थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी चिड़चिड़े, थोड़े परेशान, लेकिन होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? अभी कोई परेशान हो रहा न सेंटर जा पा रहा है और घर में परेशान है, दोनों बातें गई ना जीवन से, जा भी नहीं पाए, इधर भी खुश नहीं रहे, उदास बैठे हैं, कैसा जीवन है, कैसे गृहस्थ में फंस गए, आज ही तो इतना अच्छा प्रोग्राम था, जाने ही नहीं, जा ही नहीं पाए। अच्छा है शांत हो जाओ, एक सुंदर संकल्प रख लो, वो मेरा है तो पर्सनल, प्रभु इच्छा नहीं थी, शांत करो अपने को, जहां है वहीं आनंद में रहेंगे, तो क्या होगा इससे? जो आपको ज्यादा काम मिला है आज करने को वो जल्दी पूरा हो जाएगा और आप सेंटर पहुंच जाओगे। ये प्रैक्टिकल होगा। जब मनुष्य परेशान हो जाता है तो उसकी कार्य शक्ति बहुत डाउन हो जाती है, काम धीमा होगा, लगेगा बहुत काम है, और काम कितना भी ज्यादा हो मन प्रसन्न है, चित्त एकाग्र है, दो घंटे का काम एक घंटे में। मुझे तो बाबा की कभी कभी एक वंडरफुल बात याद आती है, उसमें जरा भी गलती नहीं है, मैं सोचता हूँ ये कितनी बड़ी बात कही। जो बच्चे साक्षी भाव में रहेंगे वो एक मास का काम एक घंटे में पूरा कर लेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। अगर इसको प्रैक्टिकल में सोचें, एक मास का काम एक घंटे में, माना एक दिन का काम दो मिनट में हो जाएगा। आपको खाना बनाना क्या क्या करना, दो मिनट तो कुछ भी नहीं है, सोचने में पूरे हो गए पहले ही, लेकिन भगवान वो अच्छे है। क्या राज है? सोचने का राज है, सब विचार करेंगे इस बात पे, क्योंकि साक्षी होने से हमारी मन की बहुत सारी शक्तियां बच जाती हैं, और मन की शक्ति हमारे कार्यों को पूर्ण करने में सबसे बड़ा काम करती है। थोड़ी कामकाज में उलझने ज्यादा होती है ना, तो समय बहुत लग जाता है, उथल पुथल ज्यादा होती है। चित्त को शांत कर दो, साक्षी माना बहुत शांत हो जाए हम, तो मन शांत होते ही मन की आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ने से कठिन काम भी सरल हो जाएंगे, सरलता पूर्वक हम सब पूरा कर लेंगे। तो चारों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, बातें इसमें और भी गहरी हैं, पर चिंतन बढ़ाएंगे, कुछ धारणाएं अपने लिए चुन कर आगे चलेंगे। बहुत लोगों का जीवन बिना लक्ष्य के चलता है। बिजनेसमैन कौन कौन है आप में से? बिजनेसमैन हाथ उठाओ। अच्छा, बिना लक्ष्य के बिजनेस होता है क्या? होगा। अब ये भी लक्ष्य बनाते होंगे, एक साल में इतना होना चाहिए, फिर एक मास में इतना होना चाहिए, रोज इतना होना चाहिए, बनाते हैं या नहीं लक्ष्य? पुरुषार्थ का भी सुंदर लक्ष्य जरूर बनाएं। मुझे ये चेंज अपने में लानी है, ये चेंज कौन सी, वो हर एक सोचेंगे, हर एक की अलग अलग बात है ना। चेंज जरूर आनी चाहिए। कईयों के साथ एक बात हो गई है, कि जैसे ज्ञान में आए थे वैसे ही हैं अब तक, ये ना हो, चेंज दिखाई दे अपने को भी और दूसरों को भी। इसलिए बाबा कहते रहे कि तुम्हें सर्टिफिकेट लेना है दूसरों से भी, खुश ना हो जाना हम बहुत अच्छे हो गए, दूसरों से भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो कोई अपने में चेंज लाना, आपके जीवन में कुछ विशेष खुशी और नशा आ जाए, ये लक्ष्य बना लो। विशेष खुशी और नशा, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात पीछे कही थी। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों का त्याग बहुत है, लेकिन अब क्या कहें, भाग्य भी बहुत है। वो कैसे कहेंगे, हमारे कहने से थोड़ा ही कहेंगे, हम कहें हमारा भाग्य बहुत अच्छा। चेहरे पर खुशी, संतोष, धैर्य और कार्यों में सहज सफलता। प्रैक्टिकल जो लोग देखते हैं ना, कार्यों में सहज सफलता। अगर किसी के कार्यों में सफलता हो न रही हो, विघन ही विघन आ रहे हो, लोग कहेंगे बड़ा भाग्यवान है, नहीं। इसलिए क्या करें जो सहज सफलता मिले। बाबा की कई बार मूल्यां चल चुकी हैं बहुत गहरी। सफल करो सफलता पाओ, केवल पैसा नहीं कुछ और भी। बोलो और क्या, मन के एक एक संकल्प को सफल करो, जो एनर्जी मिली है उसको सफल करो, आपका एक एक बोल सफल हो रहा हो, कर्म भी सफल हो रहे हो। रोज सवेरे सभी ये प्रैक्टिस करेंगे, रोज सवेरे दो चार संकल्प करेंगे उठते ही। सवेरे के संकल्पों का बहुत गहरा इफेक्ट है, हमने यह व्यक्त बाबा से सीखा था। एक बार बाबा ने कहा उठते ही तीन संकल्प किया करो, मैं माया जीत विजयी हूं, लिख लो आप ही, आपको करने हैं सब, मैं माया जीत विजयी हूं, निर्विघ्न हूं, सफलता मूर्त हूं। और भी बहुत सारे संकल्प हैं बाबा के बताए हुए। सवेरे उठ के ही संकल्प कर दो, मैं बहुत भाग्यवान हूं। आपने बहुत सुना होगा ये, मैं हर क्लास में सुना देता हूं, इससे सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। मैं निर्विघ्न हूं, विघ्न हटने लगेंगे। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता का द्वार खुलने लगेगा, बाधाएं हटने लगेंगी, मैं बहुत सुखी हूं, सुख बढ़ने लगेगा, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, खुशी बढ़ने लगेगी। तो सभी एक लक्ष्य बना लेंगे कि रोज सवेरे अपने को चार्ज करना है। भाई लोग उठ जाते हैं सवेरे, कईयों को तो नींद ही मीठी तब आती है या नहीं है। बहनें उठती हैं सवेरे, हाथ उठा रहे बहने, नहीं मेरे कहने से ना उठा देना, जो उठते हैं वो उठाना। भाई लोग कोई देखे नहीं, भाई ठीक है कोई नहीं देख रहा आपको। हाथ उठाने वालों ने तो अच्छा उठाया ना, उनको देखने में हर्जा नहीं है। जो नहीं उठते, कभी तो उठते हैं, 9 बजे तो नहीं उठते ना, नहीं कई ज्ञानी भी उठते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। 6 बजे से पहले पहले उठ जाना है, कितना भी लेट सोए हुआ बिजनेस पीपल जरा देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे फिर आधा आधा घंटा, 5:30, 5, 4:30 तक ले जाओ। मैं ज्यादा नहीं कहता कि 2 बजे उठो आप, 4 बजे उठ जाओ। 6 बजे भी अभी आप उठते हो उठते ही पहले ये संकल्प करना, उठते ही ये संकल्प नहीं करना, उठते ही नहीं, हम तो योगी में सो गया, बाबा क्या कहेगा, उठते ही उदासी आ जाती है, फिर जो उठे हैं उसका सुख भी खत्म हो जाता है। उठना चाहिए पर कारणों से नहीं उठ पा रहे, तो जब उठ गए तब से आनंद तो लेना चाहिए, उठते ही आनंद लो, वाह जीवन भगवान का साथ मिल गया, हम उसके काम आ गए, जब वो संसार बदलने आया तो हम भी उसके साथ, आनंद लो संकल्पों का, उदासी नहीं। ये ध्यान देंगे सभी, इसका मतलब ये नहीं मैं ये कह रहा हूं सोते रहो, कहीं ये फायदा उठा लें कि क्लास में कहा था ठीक है 6 बजे उठ जाना, ये नहीं, जल्दी उठने से फायदा यही है, सबसे बड़ा फायदा ये नहीं केवल योग के लिए है, योग तो है ही, बाबा की दृष्टि अपने बच्चों पर आती है, वो अपनी ओर से शक्तियां वरदान देते हैं, जल्दी हम उठेंगे तो उसकी ओर से सब कुछ आएगा, देर से उठेंगे हमें लेने की मेहनत करनी पड़ेगी, अब हम कितनी लेंगे वो हमारे ऊपर, सवेरे वो दे रहा है फुल देगा, एक एक बच्चे को प्यार देगा, दृष्टि देगा, ठीक है, पसंद है, ठीक है बहन जी, मुझे बैठना तो 7:30 तक था लेकिन मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ी तकलीफ है, तो योग के लिए बैठा दे बहनों को, और अब हम बहुत अच्छा योग करेंगे, मैंने कहा तो 6 बजे इसीलिए था कि मैं 7:30 तक कराऊंगा, पर मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, 2-4 दिन से हो रही है बैठने में ज्यादा, तो सभी बहुत अच्छा योग करेंगे, चिंतन भी करेंगे इन चीजों का, और बाबा की किरणें लेंगे, ज्ञान सूर्य की किरणें हम पर बरस रही हैं, अभी इसी अभ्यास के साथ हम समाप्त करेंगे।
उड़ जाए।